कीर्तन जो है बहुत बढ़िया हुआ और बड़ा सुहावना, एक तार एक स्वर ऐसे होना चाहिए। आप दो सप्ते ही रह गए तो अपने साधन बड़ी तेजी के साथ करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन 15 दिन के लिए साधन बताया, वो द्वादशी के दिन समाप्त, और द्वादशी के दिन स्वामी जी का जाने का विचार है। त्रयोदशी के दिन एक साधन बताया था कि 15 दिन का अनुष्ठान करना, कि 15 दिन में भगवान को प्राप्त करना, उसको आज 5 दिन बीत गए, अभी 10 दिन हो। तो 10 दिन के बाद बड़ी तेजी के साथ काम चलाना चाहिए। 10 दिन को आते कोई विलंब हुआ ही है, और उन बातों को याद कर लेना चाहिए जो 6 बार बतलाई थी, भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान, उसके लिए आज प्रातःकाल जप और ध्यान किस तरह से सुगम हो सके, किस तरह से दामी हो, ये सब बात बताई। 2 बात तो ये जप और ध्यान, 2 बात ये कि मानसिक पूजा और गीता रामायण का पाठ। तो वैसे ही जो प्रश्नोत्तर वाली गीता है उसके कम से कम 2 श्लोक, और गीता जी को अर्थ सहित एक गीता रोज, एक अध्याय को अर्थ सहित पाठ, बड़े श्रद्धा प्रेम से मानसिक पूजा, 2 चीजें। और 2 बार थी कि स्तुति प्रार्थना, सब साधारण के लिए 6 बार प्रार्थना, ये आप में अनंत प्रेम परम श्रद्धा हुए, ऐसा भी यदि न हुए तो निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक जप और ध्यान। जिनके यज्ञोपवीत है, जनेऊ है, उनके लिए 2 बात और अधिक बतलाई थी, सुंदर गायत्री व्याख्यान विस्तार से दिया गया। अब तो केवल लक्ष्य कराने के वास्ते नाम बतला दिया। अब तो अपने दिन पर दिन खूब दूसरे लिए व्याख्यान होने चाहिए खूब तेजी के साथ, और व्याख्यान के अनुसार ही खूब तेजी से साधन करना चाहिए। अभी तो भाई जी माना हनुमान साहब पूजा आए हैं, और अभी लोग जाने का कई आदमी विचार किया, बहुत से कल गए, बहुत से आज गए, यही तो मौका है सत्संग का। अभी समझो कि 12 तक भाई जी तो कहते थे कि हम 8 कोई चले जाएं, हम क्या स्वामी जी 12 तक जा रहे हैं इतना जल्दी, तो सुनने वाले भाई लोग भी आप जोर लगाओ सब, स्वामी जी जो है वहां तक तो रहना ही, और बाद के वहां भी और रहना। अच्छा हम तो थोड़ा विचार करते हैं श्रावण बदी, थोड़ा संकेत है कि श्रावण बदी द्वितीया को, और फिर अंजलि के अधीन अभी कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। स्वामी जी के जाने के बाद और 5 दिन जो आए हैं उनको जाना तो है, संयोग जो है वो वियोग को लेकर ही होता है, जन्म जो है वो मृत्यु को लेकर ही होता है, आना जो है वो जाने को साथ में लेकर ही आता है। तो जिस काम के लिए अपना जन्म हुआ है उसको सिद्ध करना चाहिए। जन्म किस लिए हुआ है? आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए हैं वो भी सिद्ध होना चाहिए, वो वही काम, वो अपने आत्मा का कल्याण और परमात्मा ही प्राप्त। उसमें विलंब क्यों हो रहा है? कि श्रद्धा प्रेम की कमी के कारण। तो फिर वो श्रद्धा प्रेम और क्या काम है? जैसे भाई जी ने बताया कि भगवान के बीच के माँ ममता करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, प्रेम की डोरी से उसको बांधना चाहिए, बहुत ठीक है। दया की बात बताई वो बहुत ही बढ़िया बात। एक दया के विषय में आपको बहुत ही रहस्य की बात बताई जाती है, जैसे प्रातः काल श्वास के द्वारा जप की बात बताई, बुद्धि के द्वारा परमात्मा के ध्यान की बात बताई, इसी प्रकार की दया की बात है। समझ में आ जाए तो बेड़ा पार। भगवान परम दयालु है, उसके समान कोई भी संसार में दयालु नहीं, प्रेमी नहीं, सुहृद नहीं। ऐसे भगवान के कायम रहते हुए और संसार में हम भटके हैं तो हमारे लिए भी लज्जा की बात, और भगवान को तो हम क्या कहें। ये समझना चाहिए कि उनकी दया तो अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं, हम उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। और जो कुछ अनुमान करते हैं उसे नहीं मालूम कितनी गुणी और अधिक दया है, जिसका और शोर भी नहीं। इतनी भगवान की हम लोगों पर दया है कि एक प्रकार से जिसको हम बता भी नहीं सकते। भगवान की थोड़ी सी दया से जीव का कल्याण हो जाता है, और इतनी दया से फिर क्यों नहीं कल्याण हो रहा है। ये तो परमात्मा के विषय का ज्ञान नहीं है, और ये किंचित जो समझ है उससे परमात्मा का स्वरूप बहुत ही विलक्षण है। इस बात के ऊपर विश्वास होने की जरूरत है। परमात्मा की दया तो है ही, वो दया किसी को प्राप्त नहीं करनी है। गंगा जी का जल भी जो प्राप्त किया जाकर के तो इतने दूर जाना पड़ता, यहाँ से घाट तक जाना तक तो जल मिलेगा ना। अरे भगवान की दया का प्रवाह तो सब जगह बह रहा है, यहाँ भी प्रवाह बह रहा है, इसके लिए जाना कहीं नहीं। यदि कहो कि उससे की जो दया है वो दिखती नहीं, भगवान सबसे प्रेम कर रहे हैं ये बात दिख नहीं रही है। बोले वो तो नहीं दिखने का कारण तो अपनी अज्ञता है, बेसमझी है, तो कैसे दिखे। बोले मान ये बात मान ली जाए कि हमारे ऊपर भगवान की दया है, हमारे सिर पर भगवान का हाथ है, हम भगवान की शरण हैं, और हमारे ऊपर सबसे बढ़कर भगवान की दया है, और भगवान की दया होने से सबकी दया है। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उस पर सब कोई कृपा करता। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण तो दया के विषय में क्या विशेषता बताई हमने, आपने ध्यान दिया होगा, नहीं तो देना चाहिए। ये विशेषता बताई कि भगवान की हम लोगों के ऊपर पूर्ण दया है। यदि कहो कि वो दया तो है पर दिखती नहीं, प्रतीत नहीं होती, तो हमने कहा कि नहीं प्रतीत होने का कारण अज्ञान है। सूर्य भगवान उदय होकर प्रकाश कर रहे हैं, सारी दुनिया का अंधकार समझो कि दूर हो जाता है, और उल्लू कहता है कि मुझको प्रतीत नहीं होता, तो उसके जो नेत्र है ना वो ऐसे ही है। तो हम लोगों की जो बुद्धि है उसमें अज्ञान का पर्दा आने के कारण से वो चीज नहीं दिखती। सूर्य का प्रकाश तो एकदम प्रत्यक्ष है, इसी प्रकार से भगवान की दया एकदम प्रत्यक्ष है। जिनके नेत्र है वे तो कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश खूब जोरदार है, और कोई समझो कि अंधा आदमी हो या उल्लू हो, उनको यदि नहीं प्रतीत हो सूर्य का प्रकाश तो उसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है, तो भगवान का कोई दोष नहीं, वे तो एकदम प्रत्यक्ष है। तो वो दया हम लोगों को कैसे दिखे कि मान लेने दया अपने को कोई मनाई नहीं है, दया के लिए कोई भगवान से प्रार्थना नहीं करनी कि हे भगवान दया करो। यदि हम कहें कि हे भगवान दया करो तो भगवान हंसते हम कहते हम तो दया पूर्ण करके कोई अपने हाथ में रखी नहीं, उसमें यदि कमी हो तो ये कहना पड़े। तो फिर दिखती क्यों नहीं कि श्रद्धा की कमी के कारण से, ज्ञान की कमी के कारण से, हमारी जो मानता की जो कमी है कि हम मानते नहीं इस बात को, उसका यह दंड दिया जाता हूं। तो वो जो सच्ची बात को मानने में क्या लगेगा, बहुत लाल की चीजें माननी चाहिए भगवान की, सबके ऊपर पूर्ण दया है या मान ले में, तो फिर आगे जाकर वो दिखने लगे और दिखने लगे सिर्फ आनंद या जो अपने पर दया समझता है। दया समझने वाला जो पुरुष है कि भगवान की मेरे पर बड़ी दया है, बड़ा प्रेम है, इस बात का जिसको अनुभव होता है तो उसकी कैसी स्थिति होती है, बड़ी भारी उच्च कोटि की स्थिति होती है। उसमें धीरता आ जाती है, वीरता आ जाती है, गंभीरता आ जाती है और बहुत से गुण आ जाते हैं। उसमें त्याग आता है, दया आती है और हर वक्त प्रसन्नता रहती है, शांति रहती है, समय समय के ऊपर इतनी प्रसन्नता रहती है कि वो भगवान की मेरे ऊपर इतनी दया, मैं तो कभी समझता ही नहीं था। ये ज्ञान होने के साथ एकदम आनंद की सीमा नहीं रहती, प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती, समय समय के ऊपर रोमांच होते हैं, आंसू प्राप्त होने लगते हैं, ओहो भगवान की इतनी भारी दया है। और इसके विषय में, दया के विषय में आपको एक रहस्य बताया जाता है। एक दिन बताया था प्रातः काल, किंतु लोगों ने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज उस दया का फल देखने में आता, हम लोगों के भी देखने में आता कि इन्होंने दया से लाभ उठाया। एक तो दया होती है लौकिक, एक होती है अध्यात्म विषय की पारमार्थिक। तो दोनों ही प्रकार की भगवान की हम लोगों पर दया है। अपने अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति में भी दया है और अपने मन के प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति में भी दया भरी पड़ी। अनुकूल में तो बोलो दया हमको प्रतीत होती है, जो हमारे मन के माप कोई कार्य आगे प्राप्त होता है तो हम समझते हैं भगवान की दया है। बोलो आप जिसको अनुकूल समझते हो और उसमें दया का दर्शन करते हो, वो संसारी के एक प्रकार से लोकी की दया है, वो निम्न श्रेणी की दया आप समझते हो भगवान जो कहते, तो आप किसको दया मानते हो? इस शरीर आरोग्य है, घर के में लड़का पैदा होता है, रुपये मिलते हैं, धन है, स्त्री है, पुत्र है, मान बड़ाई प्रतिष्ठा, इनकी जो प्राप्ति है ये बड़ी अनुकूल चीज प्रतीत होती है। तो ये भगवान की दया दिखते, बोले भगवान की देखो कैसी दया है, ये लौकिक दया। और बोले और भी सार्वजनिक दया भी, भगवान बिना पैसे के सूर्य चंद्रमा की रोशनी देते हैं और बिना पैसे के गंगा जल स्नान पान के लिए मिले और बिना पैसे के भगवान हवा देते हैं, हवा और रहने के लिए जो स्थान, तो ये सब भगवान की बड़ी भारी दया है। तो ये सब भी लौकिक दया, संसारी दया, वो दया तो दूसरी है। और ये जो दया है तो ठीक है, किंतु आप इसका रूप दूसरा ही ले लिया, इस वास्ते इस दया के रहस्य को आप समझे नहीं। क्या ले लिया कि भाई ये भगवान है तो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा समुद्र, ये सब चीजों को देख करके हम पर बड़ी कृपा करी, जो हमको हर वक्त इससे सुख मिलता रहता है, शांति मिलती रहती है। बोले ये सुख और शांति तो बहुत ही निम्न श्रेणी की है, इसके लिए भगवान ने हमारे पास ये पुत्र धन रुपया और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा और शरीर के मां आरोग्यता आदि चीजें तो नहीं दी, तो इसके लिए सब चीज दिए। बोले यही तो समझने की जरूरत, ये सब चीजें और मनुष्य का शरीर, ये सब सामग्री जो भगवान हम लोगों को जो दी है वो तो आत्मा के उद्धार के, आत्मा का उद्धार हो जाता। बोले बिल्कुल आत्मा का उद्धार हो जाए, कैसे? ये सब चीज भगवान की दी हुई, भगवान के काम में लगा, भगवान ने जो हमको दी है किस लिए दी है कि आत्मा के कल्याण के लिए दी है, और हम उसका दुरुपयोग करते हैं, उस समय का बर्बाद करते हैं, इसे देख के भगवान फटकारते समझते हैं। ये सब चीजें तुम्हारे को इसलिए दी थी जो तुम इसको मिट्टी में मिला रहे हो, तो भगवान ने जो हमारे को बुद्धि दी है उस बुद्धि के द्वारा ये सब विचार करना चाहिए। ये सूर्य का प्रकाश रात्रि के अंधकार के वहां हम स्वाध्याय नहीं कर सकते, पुस्तक नहीं पढ़ सकते, और ये सूर्य के प्रकाश में सब कुछ पुस्तक पढ़ सकते हैं, अध्यात्म विषय की, उसे अध्यात्म विषय का ज्ञान बढ़ता है। इसी प्रकार से हम संसार के पदार्थों से हरेक प्रकार का लाभ उठा सकते हैं, भूतों से भी, आकाशवायु तेज जलपति भूतों से भी, और समझो समुद्र नक्षत्र आदि इनसे भी। अपने जो व्यक्तिगत जो दिए हैं, स्त्री पुत्र धन रुपया आरोग्यता मकान, ये सब भगवान ने हमारे को कल्याण के लिए दिए हैं, और हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि जो संसार के विषय भोगों में लगा रहे हैं, तो इनको क्या करना चाहिए? इन सबको भगवान की चीज भगवान के काम में लगा देनी चाहिए, तो भगवान एकदम खुश हो जाते हैं। भगवान तो हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हमने जो इनको चीजें दी ये सुन भोग करता है कि हमारी भेंट करता है। जो भगवान की भेंट कर देता है वो कर जाता है, जो अपने ही पेट पूरता रहता है वो गिर जाता है। पुत्र को भी भगवान की भक्ति में लगा दे, अस्त्री को भी भगवान की भक्ति के मां लगा दे, और रुपयों को भी भगवान की भक्ति में लगा दे, अध्यात्म विषय में लगा दे, पुस्तक भी वही पढ़े जो अध्यात्म विषय की हुए, बाकी और जो पुस्तकें हैं ना फालतू पुस्तकें, एक प्रकार से झूठा उपन्यास, और जिनके मन सुन जो शरीर बातें भरी हुई हो और जिनके मन नास्तिकता की बातें हुए, ऐसे पुस्तकों के तो आग ही लगा। मैं बच्चा था तो ये कोई वक्त में शिव तमाशे की पुस्तक पढ़ लिया करता था, जबकि हमारी आयु कोई 12 साल की थी। फिर एक दिन ये बात ध्यान में आई कि ये जो खेल तमाशे की पुस्तक है वो खेल तमाशे की भी बहुत खराब पुस्तक है, और नानी ने धूम की बनाई हुई, धूम की तो बनाई हुई, और ख्याल तमाशे की वो पूर्णमल के ख्याल की, नार नौटंकी के ख्याल की, सब गंदी पुस्तक। हमने सोचा कि इस पुस्तक को क्या करें, हमारा मित्र था नानूराम गोविंद का, इससे सलाह करके क्या करें। मित्र होने के नाते हम दोनों आदमियों के रूप में लगे थे, क्या करें कि बोलो ये खराब पुस्तक है, किसी को दे, वो जिसको दे रहे उसका अनिष्ट होगा, जैसे हमारे लिए घातक है उसके लिए भी घातक। तो फिर ये सोचा कि इसको आग लगा दे, अग्नि देवता को दे, क्यों कि सामर्थ्य को नहीं दूर गुजरेगी, वहां कुछ भी नहीं हो। तो ये असल में सोचा, तो अपने घर के बीच के मां समझो कि ऐसे पूछ सके आ जाओ है तो आग लगाने के लायक किसी पुस्तक है कि जो नास्तिकता की पुस्तकें हैं अश्लील भावों की पुस्तकें हैं और जिससे अध्यात्म विषय में नुकसान होता है तो उनके तो आग ही लगा देनी चाहिए। और बदले में कोई सी पुस्तकें कथी करनी चाहिए जो आत्मा के कल्याण में सहायक हो। बढ़िया बढ़िया पुस्तक, बढ़िया इतिहास, भक्तों का इतिहास और भक्तों की भक्त गाथा, भगवान का जीवन चरित्र, भक्तों का जीवन चरित्र और समझो कि भक्तों का लेख, अच्छे अच्छे जो भक्त हुए, तुलसीदास जी हुए, सूरदास हुए, कबीरदास हुए, इनकी पुस्तकें। कलयुग के वहां बहुत से भक्त हुए, गौरांग महाप्रभु, श्री राम कृष्ण जी परमहंस और सहजा भाई, मीरा भाई, स्त्रियों के मां भी बहुत, पुरुषों के मां भी, नरसिंह मेहता, संगीत तुकाराम जी, ज्ञानेश्वर जी, समर्थ रामदास, ऐसे बहुत से भक्त यहाँ आपने इस देश में हो चुके हैं। उनका जो उपदेश है, जैसे तुलसीदास जी का उपदेश किया कि रामायण विनय पत्रिका, विनय पत्रिका के अर्थ को समझना चाहिए, खाली बांटना नहीं, बांटना अर्थ ही पढ़ना। तो उस वक्त के वहां आंसुओं की धारा बनने लग जाती, उसमें ऐसा विनय का भाव भरा हुआ है। तुलसी के रामायण उसके वहां समझो कि भक्ति और प्रेम उसमें भर दिया, तो बड़ी अच्छी पुस्तक है। इसी प्रकार से समर्थ रामदास की जो पुस्तक है और सुंदर विलास माने सुंदर दास जी की पुस्तक है और स्वामी नारायण के दो का संग्रह, नारायण दास जी के दो हैं और भी बहुत से भक्तों की, और अपने पुरानी जो पुस्तक है ऋषि मुनियों की रचित है, वो सो इतिहास पुराण। और आगे में बढ़ो तो समझो की श्रुति स्मृति और आपने दर्शन शास्त्र, उनकी समझ माने उनकी समझ की अपने योग्यता नहीं हो रहे, तो ये तो समझो की जैसे गीता भागवत रामायण ये तो बहुत सी पुस्तकें हैं, इनका अर्थ सहित अध्ययन करना स्वाध्याय है। बहुत भाई लोग नौ पाठ करते हैं, अच्छा न करने वाले की अपेक्षा वो अच्छा, किंतु अर्थ से ही जो उसका पाठ किया जाए, समझ करके पाठ किया जाए, अर्थ की तरफ ध्यान रख करके पाठ किया जाए, वो बहुत ही बढ़िया, उसके समान कुछ भी नहीं है। ऐसे गीता का अर्थ समझते हुए पाठ किया जाए उसका दर्जा बड़ा ऊंचा है, और ज्ञान नहीं हो तो उसके अर्थ को पढ़ करके उसे मन लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने जो किया जावे प्रत्यक्ष में लाभ होता है। तो भगवान ने जो रुपये दिए हैं उन रुपयों को किस काम में खर्च करना चाहिए, कि भगवान की भक्ति के वहां लोगों को लगाना चाहिए। पुस्तक एक प्रकार से गीता रामायण भागवत आदि की मुक्त बांटनी चाहिए, पैसा देकर के दो तो वो भी आपका प्रचार बहुत उत्तम है। इसी प्रकार से थी जो विधवा माताएं हैं, काम नहीं कर सकती है, वृद्धा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वही से कोई भी हो, जो हमारे समझो की सुंदर जाति के है जिनमें पुनर्विवाह होता है, उनके लिए इतनी चिंता नहीं कि वो और दूसरा विवाह कर लेती है। और जिनके यहाँ विवाह नहीं होता, ऐसी जो विधवा स्त्रियां हैं उनकी अपने धन से सेवा करना बहुत उत्तम। और जो कुटुंब वाले हैं जिनके 50 रुपया वो कमाता है, घर में 100 रुपया खर्च लगे, तो ऐसे पुरुषों को मदद देना। और जिनके घर में कन्या होती है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उन कन्याओं का विवाह करना, उसमें रुपया लगाना, ये रुपयों का सदुपयोग करना है। उन्हीं रुपयों का दुरुपयोग किया जाए तो उसका फल होता है नरक, और सदुपयोग किया जाए तो उसका फल होता है स्वर्ग। और वो सत्युपयोग करके यदि निष्काम भाव तक रहे तो उसका फल है आत्मा का उद्धार। तो ये जो मनुष्य का शरीर ये सब ऐसे हमारे को जो भगवान ने दिया है ना, वो सृष्टि लिए भी नहीं, आत्मा के कल्याण के लिए दिया है। इसलिए एक प्रकार से उस काम ने उसको लेना चाहिए, ये बुद्धिमता है। और नहीं तो स्वर्ग के लिए या संसार के भोग के लिए भी वो यज्ञदान तब करता है, तो वो करना बुरा तो नहीं है, किंतु ये तो हम कहेंगे कि बुद्धिमान तो नहीं है। बुद्धिमत्ता तो उसमें ही है कि उसी कर्म से ऊंचे से ऊंचा लाभ उठाने, उसी का फल एक प्रकार से थी, उसी जगदान तप का फल जो है, जगदान तप का फल नरक भी है और स्वर्ग की भी प्राप्ति है, मुक्ति भी है। तो वो तो मूर्ख है जो नरक की प्राप्ति के लिए जगदान तप करे। बोलो भाई, जगदान तप को नरक की प्राप्ति के लिए तो कोई नहीं करता, नरक के लिए कोई करता है तो झूठ कपड़े चोरी व्यभिचार करता है, और तो भी नरक के लिए नहीं करता, वो झूठ कपड़े चोरी व्यभिचार करके और भगवान को एक प्रकार से फांकी देता है कि नरक में हमको नहीं जाओ, काम तो करता है नरक का और उससे बचना चाहता है, वो कभी बचने का नहीं, उसको तो नरक का द्वार देखना ही होगा। तो फिर ये बात जो कही कि कोई आदमी यज्ञदान तब जो करता हो नरक के लिए, क्या मैं थोड़ी बात समझने की है, कोई भाई बहुत श्रद्धा के साथ यज्ञ करता है, तप करता है, दान देता है, बड़ी श्रद्धा के साथ शास्त्र की विधि भी उसके बीच के में है, किंतु क्यों करता है कि अपने शत्रु को मारने की, अपने जो बैरी है दुश्मन उसको उखाड़ने के लिए, उसका अनिष्ट करने के लिए कि हे भगवान वो मेरे को बड़ा तंग करता है, तुम उसका पुत्र मार दे, उसको मार दे, या उसके घर से आग लगा दे, या इसको कम से कम बीमारी दे दे। ये जो भाव है, इस भाव से जो यज्ञ किया जावे, दान दिया जावे, तब किया जावे, वो यज्ञ और दान सब नरक में ले जाने वाला है, क्योंकि दूसरे के अनिष्ट के लिए करता हूं। हर एक आदमी यज्ञ दान तब करता है किस लिए कि प्रभु हमारे को पुत्र दो, या धन दो, या संसार के मां मेरी कीर्ति हुए, तो मान बड़ाई कीर्ति के लिए, धन के लिए, पुत्र के लिए, आरोग्यता के लिए वो सोचा, जिसमें उसका वो फल मिल जाता है प्रभु वस्तु, और इससे आगे और बढ़े कि प्रभु हमारे को स्वर्ग की प्राप्ति, तो स्वर्ग तक की प्राप्ति हो जाती है। सेकंड भाव से कि जगदान तब, जगदान तब सेकंड भाव से करने पर सिर्फ जो स्वर्ग तक की प्राप्ति हो जाती है, और जो निष्काम भाव से करे तो वो संसार सागर से उद्धार कर देता है। तो इतना डिफरेंस है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करना तो बीच की बात है, और नरक की प्राप्ति के लिए तो नहीं करते कि उसका फल नरक होता है, और परमात्मा की प्राप्ति है उसके मुकाबले तो कोई चीज है ही। तो हमारे को तो ऊंचे से ऊंचे दर्जे का जगदान तब